कीर्ति अरुणिमा से माफी मांगती है अपनी बहन के दुर्व्यवहार के लिए और उसे वापस अपने दोस्तों के पास ले आती है। अरुणिमा एक काउंटर से लगकर खड़ी थी और उसके हाथ में जूस का गिलास था। सामने की तरफ कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और वहां बज रहे संगीत पर नाच रहे थे। तभी अरुणिमा को ऐसा एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो जल्दी से पलटकर पीछे देखती है तो पीछे पृथ्वी खड़ा था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अरुणिमा एक कदम पीछे होती है और कहती है, कुंवर साहब, आप यहां पर कुछ चाहिए था क्या? आप चाहिए, पृथ्वी ने कहा और अरुणिमा अचानक से झिझक गई। वो हैरानी से कहती है, जी कुछ कहा आपने? पृथ्वी जल्दी से बात बदलता है और कहता है, हाँ मैं कह रहा था कि मेरी बहन ने जो आपके साथ बदतमीजी की, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरुणिमा ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो बड़ी है, कुछ कह भी देंगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। पृथ्वी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाउ स्वीट। पृथ्वी देखता है कि अरुणिमा के हाथ में जूस का खाली गिलास है और वो कहता है, अरे आपकी ड्रिंक तो खत्म हो गई है, मैं दूसरा जूस मंगवाता हूँ। अरुणिमा जल्दी से कहती है, नहीं नहीं मैंने बहुत जूस पी लिया है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन पृथ्वी एक वेटर के हाथ से ऑरेंज जूस का गिलास लेते हुए कहता है, अरे ऐसे कैसे, और कुछ नहीं चाहिए? आप हमारे मेहमान हैं, हम आपको खाली हाथ थोड़ी न रहने देंगे। ऐसा कहते हुए वो जबरदस्ती अरुणिमा के हाथ में जूस का गिलास रखने वाला होता है। लेकिन अरुणिमा जब पृथ्वी को अपना हाथ पकड़ता हुआ देखती है तो अचानक से वो चौंक कर पीछे हो जाती है और अपना हाथ छुड़ा लेती है। इस छीना झपटी में पृथ्वी के हाथ में रखा हुआ जूस का गिलास अरुणिमा के कपड़ों पर गिर जाता है। अरुणिमा अपने कपड़ों से जूस साफ करने लगती है और पृथ्वी टिश्यू पेपर लेते हुए अरुणिमा के कपड़ों पर रखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपके कपड़े खराब हो गए, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया, आई एम सॉरी। अरुणिमा जल्दी से पीछे होती है और टिश्यू पेपर अपने हाथ में लेते हुए अपने कपड़ों को साफ करते हुए कहती है, नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपने जानबूझकर नहीं किया है, वैसे भी हल्का दाग है, पानी से धोने से निकल जाएगा। पृथ्वी एक सर्वेंट को बुलाता है और कहता है, अब मैडम को वॉशरूम ले जाओ। अरुणिमा जी आप वॉशरूम में जाके अपने कपड़े साफ कर लीजिए, वरना इसमें दाग लग जाएगा। अरुणिमा हाँ में सिर हिलाती है और उस सर्वेंट के साथ वॉशरूम में चली जाती है। वो सर्वेंट महल के पीछे के रास्ते से अरुणिमा को वॉशरूम लेकर जाता है। अंदर जाते ही अरुणिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसकी सांस गली में ही अटक जाती है। इतना भव्य और सुंदर महल, आज तक इस महल को उसने मैगजीन में सिर्फ बाहर से ही देखा था, लेकिन पहली बार इस महल को वो अंदर से देख रही थी। महल नहीं था, शीश महल जैसा था। ये महल के अंदर से भव्यता इतनी अद्भुत थी कि वो शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता था। अरुणिमा धीरे धीरे कदमों से उस सर्वेंट के साथ महल के अंदर आ गई। वो नौकर उसे वॉशरूम दिखाता है। अरुणिमा जल्दी से अंदर जाती है। वॉशरूम भी वीआईपी वॉशरूम की तरह था। अरुणिमा ने वॉशरूम यूज किया और उसके बाद वो बाहर जाकर टोटी से पानी निकालने की कोशिश करने लगी। सत्यानाश, यूनिक टैप था ये, मॉडर्न ऑटोमेटिक टैप था, इसमें कोई टोटी नहीं थी। अरुणिमा को समझ में ही नहीं आया कि इसमें से पानी कैसे निकलेगा। वो टैब में हर जगह हाथ मारने लगी लेकिन पानी बाहर ही नहीं आ रहा था। अरुणिमा को अपने कपड़ों से पानी के दाग साफ करने थे लेकिन इस टैब में से तो पानी ही नहीं निकल रहा था। आधे घंटे कोशिश करने के बाद एक टैब में से पानी निकला। दरअसल उस टैब के बिल्कुल नीचे हाथ रखना पड़ता है, तब जाकर सेंसर पानी ऑन करता है। जैसे ही पानी ऑन हुआ, अरुणिमा ने जल्दी से अपने कपड़ों से जूस के दाग साफ किए। अरुणिमा वॉशरूम यूज करके बाहर आती है तो देखती है कि वॉशरूम एरिया में और पूरी गैलरी में वो अकेली ही थी। इतनी देर वॉशरूम में रहने के बाद सर्वेंट थोड़ी ना उसका वेट कर रहा होगा, वो तो वहां से कब का चला गया था। अब अरुणिमा इस गैलरी में अकेली थी। वो गैलरी से निकलकर महल की तरफ आती है और इस महल की भूल भुलैया में खो जाती है। अरुणिमा महल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी लेकिन जितना वो बाहर निकालने की कोशिश करती उतना ही इस भूल भुलैया में और उलझती जाती। अरुणिमा को पता ही नहीं चल रहा था कि वो सीढ़ियों से बाहर की तरफ जा रही है या और अंदर की तरफ जा रही थी। अरुणिमा देखती है कि वो एक गैलरी के पास पहुंच गई है जहां पर रोशनी सिर्फ नाम मात्र की थी। ऊपर सिर्फ येलो रंग के दो बल्ब चल रहे थे। अरुणिमा देखती है उस गैलरी के बिल्कुल अंत में एक कमरा है जहां से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। वैसे तो उस जगह को देखकर डरावना सा अनुभव हो रहा था और अरुणिमा का मन कह रहा था कि वापस चली जाऊं और किसी और रास्ते से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढूं। लेकिन लड़कियों के मन के एक कोने में चुल होती है हर चीज को जानने की। बस फिर क्या था, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अरुणिमा के कदम भी उस दरवाजे की तरफ बढ़ गए। अरुणिमा जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि अंदर से एक लाल रंग की रोशनी फैली हुई थी और दरवाजा हल्का खुला हुआ था। अरुणिमा अपना एक हाथ दरवाजे पर रखकर दरवाजा पूरा खोल देती है। ये एक बड़ा सा कमरा था, शायद किसी रानी का कमरा था क्योंकि यहाँ की थीम रेड कलर की थी। अरुणिमा धीरे धीरे कदमों से कमरे के अंदर आती है और पूरे कमरे को देखने लगती है। बस एक नाइट लैंप पर जल रही लाल रंग की रोशनी उस पूरे कमरे की शोभा बढ़ा रही थी। अरुणिमा पूरे कमरे को अच्छी तरह देख रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने की दीवार पर जाती है। 5 फुट के फ्रेम में एक औरत की फोटो थी। लाल बनारसी और महंगी साड़ी में राजसी कहने पहने हुए वो औरत सिंहासन पर बैठी हुई थी। अरुणिमा उस तस्वीर को देखते देखते उसे तस्वीर में मौजूद औरत की आभा में ही खो गई। उस तस्वीर में इतना तेज था कि किसी को भी अपने पास आने के लिए आकर्षित कर सकता था। अरुणिमा उस तस्वीर के बिल्कुल पास चली जाती है और वो अपना हाथ बढ़ाकर उसे तस्वीर को छूने ही वाली होती है कि पीछे से एक डरावनी और खूंखार आवाज़ उसके कानों को भेज जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? अरुणिमा एकदम से कांप जाती है और 2 कदम पीछे होते हुए पलट कर देखती है। दरवाजे पर इस समय आस्तिक खड़ा था। उस लाल रंग की रोशनी में आस्तिक किसी लाल दानव की तरह प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर गुस्सा और उसकी आंखों में अंगारे साफ नजर आ रहे थे। अरुणिमा हैरानी से अपने मन में कहती है, राजा साहब। अरुणिमा आस्तिक को ऐसे देखकर एकदम से घबरा गई। अरुणिमा अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है, वो मैं गलती से, मैं रास्ता भटक। इससे पहले अरुणिमा अपने शब्द पूरे कर पाती, आस्तिक तेज कदमों से अरुणिमा के पास आता है और एकदम से उसका गला पकड़ते हुए उसे दीवार से लगा देता है।